पेश हैं आज के मुख्य समाचार। अफगानिस्तान में 20 वर्षों में सबसे घातक भूकंप के पीड़ितों को बचाने का काम जारी। ऊर्जा बाजार संचालक द्वारा व्यापार निलंबन हटने पर फेडरल सरकार अक्षय ऊर्जा में बदलाव पर दे रही है जोर। और खेल में पेट में लगी चोट के कारण निक किरियोस मायोर्का टेनिस चैंपियनशिप से हटने के लिए हुए मजबूर। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 से पार हो गई है और ये आंकड़े और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बचाव दल द्वारा पीड़ितों को बचाने का काम अभी भी चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को पैक्टिका प्रांत में खोस्त शहर के पास आए 6.1 तीव्रता के भूकंप में 1500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे कई गांवों में कठिन परिस्थितियों से बचाव के प्रयासों में बाधा आ रही है। वर्ल्ड विजन ऑस्ट्रेलिया के पैट्रिक थॉमस ने SBS न्यूज को बताया कि उनकी एजेंसी आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान कर रही है और देश के पश्चिम में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
The situation at the moment is one of desperation. It was desperation before the Taliban took over. With drought and with food supplies being extremely low and limited, to get to these remote communities in particular.
राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के संचालक द्वारा संकेत दिए जाने के बाद घरों और व्यवसायों के लिए बिजली पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होगी और व्यापार के निलंबन को आज सुबह ढीला कर दिया जाएगा। बाजार ऊर्जा की स्थिति में स्पष्ट सुधार के बाद ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट ऑपरेटर यानी AEMO ने बाजार को सामान्य स्थिति में लाने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण से काम शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते ये प्रणाली अस्थिर हो गई थी, जिससे AEMO को बिजली आपूर्ति को स्थिर करने के लिए नियंत्रण लेना पड़ा। फेडरल के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बावन ने SBS को बताया कि ये कार्यवाही बिल्कुल जरूरी थी।
It's been a tough situation. It was a big call, but we will do what we have to do as a government. They will do what they have to do as an operator to keep the lights on. Consumers come first, and that's exactly what we've done, working in difficult circumstances, because as you know, we haven't had enough generation come on in the last decade to replace the generation which inevitably had to leave. There hasn't been a plan for the transition to renewables. We don't have enough storage. We don't have enough transmission. We're going to get on and fix that, but in the short term, our job is to keep the lights on, and that's what we'll continue to be focused on.
ऊर्जा बाजार अब जल्द ही फिर से कीमतें निर्धारित करने का काम शुरू कर सकता है। लोगीज में एक विवादास्पद भाषण के कारण पूर्व राजनीतिक कर्मचारी ब्रिटनी हिगिंस के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के मुकदमे में और विलंब लगने वाला है। टीवी होस्ट लीसा विल्किंसन के भाषण ने हिगिंस के मामले को संबोधित किया। आपको बता दें, ब्रिटनी हिगिंस द्वारा ब्रूस लेरमन पर संसद भवन के ऑफिस में सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए गए, जिसका मुकदमा अगले सप्ताह चलने वाला था। लेकिन लेरमन के बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि अदालत में जिस तरह के भाषा का उपयोग हुआ, उससे अदालत की अवमानना हुई और इससे जूरी के फैसले पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद ACT के मुख्य न्यायाधीश लूसी मैकलम ने मुकदमे में 3 महीने की रोक लगा दी है। अब सुनवाई अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है। लेरमन अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते हैं और अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। मेलबर्न शहर दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक के रूप में अपना स्थान बनाए रखे हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2022 के सर्वेक्षण में इस विक्टोरिया की राजधानी को कुल मिलाकर 10वां स्थान मिला है। वियना, कोपेनहेगन एंड ज्यूरिख इन यूरोपीय शहरों को शीर्ष 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ब्रिस्बेन, एडलेड और पर्थ सभी ने 2021 में शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई, लेकिन अब वे क्रमशः 27वें, 30वें और 32वें स्थान पर आ गए हैं। यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन के साथ शामिल होकर यूक्रेन की बोली पर मतदान करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सदस्यता का बिड ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक का सबसे अहम मुद्दा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वह आशावादी है कि उम्मीदवारी को मंजूरी दी जाएगी।
We are just days away from the European Union's historic decision on Ukraine. And I am sure that none of us, none of you have any doubt that Ukraine should get a positive decision. Russia's attack on Ukraine has restored to our memory the worst pages of history. Russian bombs are destroying cities. Russian soldiers are killing thousands of civilians. Russia is even carrying out mass deportations of Ukrainians.
इस बीच कैलिनिनग्राद के रूसी इनक्लेव में रूसी सैन्य पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों की वजह से लिथुआनिया शहर से रेल द्वारा कुछ सामानों के परिवहन को रोका गया। उसके बाद निवासी थोक में सामान खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने लिथुआनिया के प्रतिबंध को बिल्कुल अस्वीकार्य बताया और मॉस्को से जवाबी कार्यवाही होने की चेतावनी भी दी।
In this case, we are convinced that these unlawful sanctions imposed by the European Union are absolutely unacceptable in this situation. They are unacceptable, and to impose those sanctions against the transit to Kaliningrad and back would be a violation of foundational documents, the 94 Agreement, and so on. And so, it is our firm belief the situation is obvious, and the measures are being prepared after we carefully weigh it all out. We'll be able to discuss something.
अब खबरें भारत से। ओडिशा के बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का साथ दें। फिलहाल इटली के यात्रा पर गए मुख्यमंत्री पटनायक ने मुर्मू को ओडिशा की बेटी बताते हुए उनका समर्थन करने की अपील की। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने निर्वाचक मंडल में बीजेपी के वोटों को ध्यान में रखते हुए मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा भरेंगे। पत्रकारों से बातचीत में 84 वर्षीय सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि ये देश से जुड़ा मुद्दा है। दूसरी ओर भारत में कोविड-19 मामलों में 8.68% की उछाल आई है। पिछले 24 घंटों में 13,313 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड-19 से 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 69 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.90 रुपये हो गई है। अब समाचार खेल जगत से। टेनिस में निक किरियोस को पेट में आई चोट के कारण मायोर्का चैंपियनशिप से उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। 45वीं रैंकिंग पर आए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कहा कि वह समस्या को और बदतर कर विंबलडन में अपने मौके को संदेह में नहीं डालना चाहते। इस बीच बुधवार को सेरेना विलियम्स अपने पार्टनर ऑन्स ज़ियोबर के साथ ईस्टबोर्न इंटरनेशनल में 6-2, 6-4 से जीत हासिल कर महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब जानते हैं कल के मौसम का हाल। पर्थ में ज्यादातर धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। एडिलेड में बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में दिन ढलने के साथ बारिश भी कम होगी और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में 1 या 2 बौछार की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। सिडनी में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में भी धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में भी कल धूप के साथ न्यूनतम तापमान रहेगा 21 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कड़ी धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 39 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।